ओम शांति। मधुर एवं बुलंद आवाज की ध्वनि यज्ञ रक्षक बेहद सेवाधारी ज्ञान के कठिन रहस्यों को भी बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करने में माहिर दादियों के अति नजदीक आदरणीय उषा देवी जी हमारे बीच में हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में सीनियर राजयोग टीचर एवं मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। साउथ अफ्रीका में आपका लौकिक जन्म हुआ। 1980 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में अर्पण कर दिया। 1980 से 92 तक आपने मुंबई और हैदराबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा की प्रेरणाओं से आपने सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पर कोर्स डेवलप भी किया और इस पर आपने इंग्लिश और हिंदी में एक बुक भी लिखी है। आपको अनेक इंडस्ट्रियल ग्रुप कॉरपोरेट सेक्टर से सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कोर्स के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टाफ के लिए निमंत्रण मिलते रहते हैं। जी जागरण साधना चैनल आस्था चैनल और बहुत सारे लोकल सिटी केबल्स पर आपके प्रवचन श्रृंखला चलती रहती है और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने दीदी जी को टीवी पर देखा भी होगा। बाबा ने जो काम दिया है गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए, आपने इस गीता के रहस्य को अध्ययन करके 7 डेज कोर्स गीता ज्ञान रहस्य बनाया है। रामायण के वास्तविक रहस्य पर भी आपकी प्रवचन श्रृंखला बेमिसाल है। इन दोनों महान ग्रंथों पर आपने जो रहस्य समझाए हैं, विश्व भर में आपने बाबा को प्रत्यक्ष किया है। मधुबन में योग शिविर कराने और SML कोर्स कराने में आपको महारत हासिल है और आज हम आपसे विशेष सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। आदरणीय उषा दीदी जी,
ओम शांति। बाप दादा, हम सभी बच्चों के प्रति यही आश रखते कि मेरे एक एक बच्चा बाप समान हो जाए, संपूर्ण हो जाए और उसके लिए बाबा सहज से सहज पुरुषार्थ हम बच्चों को बताते हैं। कई बार बताया है मुरलियों में कि बच्चे बाप के कदम पर कदम रख करते चलो। पिछले सीजन में बाबा ने ये भी स्पष्ट किया था कि बच्चे संपूर्णता के लिए ब्रह्मा बाबा ने 8 कदम चले और तब से लेकर के कई बार मन में संकल्प भी आता। कई भाई बहने भी पूछते रहते कि बाबा के वो 8 कदम कौन से हैं। तो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनने के जो 8 कदम है उसमें सर्वप्रथम कदम है कि जैसे ही बाबा को दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होने लगे और आत्मा का रियलाइजेशन हुआ तब से लेकर के बाबा ने आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया। तो पहला कदम बाबा का है आत्म अभिमानी बनने का और उस के लिए ब्रह्मा बाबा ने खुद भी स्वयं के साथ बहुत मेहनत की। कई डायरियां बाबा लिखते थे जो दादियों से सुना कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, निर्मल आत्मा है, नारायण आत्मा है। हर एक को आत्म देखने का अभ्यास और उसके लिए बाबा पक्का करने के लिए बार बार जैसे स्वयं लिखते थे और लिखते हुए पक्का करते थे, इतना बाबा ने अपने आप से ये मेहनत की कि कई बार दादियां कहते हैं दीवारों पर भी बाबा लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति डेवलप करने के लिए, आत्मिक दृष्टि डेवलप करने के लिए, आत्मिक भाव डेवलप करने के लिए बाबा ने ये सबसे पहला पुरुषार्थ या पहला कदम चला। और इतना ही नहीं, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि फिर ब्रह्मा बाबा रात को अपना चार्ट देखते थे, अपना आईना देखते थे, और उसके लिए बाबा रात्रि के समय में अपना जैसे राज दरबार लगाते थे और मन मंत्री से पूछते थे कि आज तेरे कर्मचारियों का हाल चाल कैसा रहा, कहीं कोई कर्मेंद्रिय ने कोई चंचलता तो नहीं मचाई, कहीं कोई कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। इस प्रकार जैसे बाबा रात्रि को अपना चार्ट चेक करते थे और चेक करने के साथ साथ दूसरे दिन स्वयं के अंदर एक परिवर्तन और तीव्रता से बाबा ले आते थे। इस तरह बाबा ने आत्मिक स्थिति को डेवलप करने का इतना गहरा पुरुषार्थ स्वयं के साथ किया और प्रैक्टिकल देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति को डेवलप किया। ये पहला कदम बाबा का रहा। उसके बाद दूसरा कदम, ये पहले कदम से क्या किया बाबा ने, अपने मैंपन को गलाया, देह अभिमान को गलाया और संपूर्ण रीति से देह भान जैसे बाबा का मिट गया था, ये सभी बच्चे भी जानते हैं कि कैसे बाबा का दैहिक भाव, दैहिक दृष्टि वृत्ति कभी नहीं महसूस की किसी ने। इतना बाबा ने मैंपन को गलाया, क्योंकि हमेशा बाबा मुरली में भी कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसका आने का द्वार ये मैंपन, यही कारण है। तो इस कारण को संपूर्ण रीति से समाप्त किया, तो ये था पहला कदम। उसके बाद दूसरा कदम बाबा का था मेरेपन को गलाने का, और उसके लिए बाबा ने जैसे पांच बहनों का ट्रस्ट बना करके अपनी संपूर्ण संपत्ति, चल अचल संपत्ति जैसे पूर्ण रीति से स्वाहा किया यज्ञ के अंदर, पांच बहनों को समर्पित कर दिया, खुद भी समर्पित हो गए, और इस तरह से मेरेपन का भाव बिल्कुल समाप्त हो गया बाबा का। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है शिव बाबा का है, और इस देहत के कार्य को संभालने के लिए माताएं बहनें जो निमित्त है वो ट्रस्टी है। इस तरह से जैसे बाबा ने मेरेपन को समाप्त किया और संपूर्ण समर्पण, जिसको आज भी बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि समर्पण का भाव ये नहीं कि आप सभी भी यहाँ आकर के बैठ जाओ, लेकिन समर्पण जो बाबा कहता है बुद्धि से सरेंडर होना, यानी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टीपन के भाव को डेवलप करना। बाबा कई बार उसके लिए हम सब बच्चों को युक्ति बताते हैं कि बच्चे जब शिव बाबा को समर्पित हो जाते हैं, माना ही जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा जीते जी मर जाना, तो ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम था जीते जी मर जाना, संपूर्ण स्वाहा या संपूर्ण समर्पण का। उससे बाबा ने मेरेपन को संपूर्ण रीति से समाप्त कर दिया। और ये दूसरा कदम जैसे बाबा चले, तो हम बच्चों को भी बार बार विभिन्न मुरलियों में बाबा ने यही प्रेरणा दी कि कैसे बुद्धि से समर्पित होना है, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी स्वयं को समझना है। संडे की मुरली के अंदर भी बाबा ने इसी बात को रियलाइज कराया था कि कभी कभी अभी तक भी वो गृहस्थीपन का भाव आ जाता है, लेकिन जब ये मिट जाएगा तो मिटाने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया कि मेरा कुछ भी नहीं, वहां तक कि बाबा ने अपने लौकिक परिवार वालों से भी कहा कि अब ये सब कुछ शिव बाबा का अर्पण हो गया है, मेरा भी नहीं तो आपका भी नहीं है, इसलिए इस भाव को समाप्त करना। और इस तरह से लौकिक बच्चों को भी या लौकिक परिवार को भी संपूर्ण रीति से समर्पण किया। ये दूसरा कदम था बाबा का। उसके बाद तीसरा कदम बाबा का था कि जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और वो बोर्डिंग खोला कि जहाँ छोटे बच्चे भी थे, माताएं बहनें भी थी, तो बाबा ने यज्ञ मात पिता बन करके उनकी पालना करना आरंभ किया। और इस तरह से यज्ञ मात पिता बन गए कि मात पिता बन करके जो बच्चे थे यज्ञ के अंदर, उनकी इतनी सुंदर रीति से पालना की कि कई बार आज भी गुलजार दादी सुनाती है अपने अनुभव के अंदर कि बाबा जब हम बोर्डिंग में थे तो हमको चैतन्य ठाकुरों के रूप में देखते थे, और चैतन्य ठाकुरों के रूप में समझते थे। जो माताएं इन छोटे बच्चों की सेवा के लिए भी थे, उन्हें भी बाबा यही कहते मेरे इन चैतन्य ठाकुरों की इस तरह से पालना करनी है कि उनको किसी भी प्रकार की कमी न हो। तो ऐसे बाबा ने जैसे उनको चैतन्य ठाकुर कहो या प्रिंस प्रिंसेस के रूप में पालना की, सुबह उठाने से लेकर के रात्रि सोने तक जागो मोहन प्यारे, इन गीतों से जैसे राजकुमार राजकुमारियों को उठाते और रात को सुलाते तो सोजा राजकुमारी सोजा, इस प्रकार से बाबा ने इतनी सात्विक और श्रेष्ठ पालना की मात पिता के रूप में कि शायद ही आज दुनिया के अंदर कोई माता पिता अपने बच्चे की इस तरह से पालना कर पाते हैं। करना चाहते तो है, लेकिन फिर भी समय का अभाव हो या कई प्रकार के जिम्मेवारी होती है जिस कारण से वो पालना नहीं दे पाते हैं। लेकिन बाबा ने कितने सुंदर तरीके से पालना की। इस तरह से जैसे एक एक को परवरिश देते हुए, जैसे उनके संस्कारों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि न आए, दुनिया की कोई भी हवा इनको स्पर्श न करे, इस तरह बाबा ध्यान रखता था। और जैसे दुनिया की बातों से, दुनिया के लोगों से बिल्कुल अनजान। दादियां कभी कभी सुनाती है अपने अनुभव में कि अगर वो बीमार भी होते थे तो भी बाबा बाहर से कोई डॉक्टर बुला करके यही कहते थे कि वो पति तुम्हारे शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से बाबा ने उनकी परवरिश की कि कहीं कोई बाहर की हवा इनके दिमाग को दूषित न कर दे, उनके संस्कारों में कोई भी प्रकार का भाव न क्रिएट कर दे, ऐसी बाबा ध्यान रखता था, ऐसी बाबा पालना करते थे। भावार्थ ये कि बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी जब आप स्वयं को ट्रस्टी समझ लेते हैं तो वो बच्चे आपके नहीं लेकिन वो बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चों की पालना कर रहे हैं, इन आत्माओं की पालना करने की जिम्मेवारी मेरी है, तो कैसे आत्मिक दृष्टि देखते हुए, उनको भी आत्मस्वरूप में देखते हुए, उनको मोहवश या लगाववश पालना न करना, लेकिन ये चैतन्य ठाकुर है। इस तरह से जब आप पालना करेंगे तो कभी भी आपका अटैचमेंट मोह क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप उनको श्रेष्ठ संस्कार दे सकेंगे, श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन कर सकेंगे। तो ये प्रैक्टिकल कदम बाबा ने चल करके दिखाया। उसके बाद चौथा कदम बाबा का था कि जब बाबा पाकिस्तान से भारत आए, माउंट आबू में आए, तो माउंट आबू के अंदर थोड़े ही समय के अंदर बेगरी पार्ट आरंभ हुआ। बाबा इसीलिए कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैं तो इंजन हूँ, जितने भी तूफान लगने हैं पहले मुझे लगते हैं और उसके बाद आपके पास आते हैं। तो बड़े से बड़े पेपर बाबा के सामने आए, लेकिन बाबा ने एहसास भी नहीं किया कि ये पेपर है, और पेपर समझ करके कभी उसको पार नहीं किया, लेकिन उस पेपर को भी परिवर्तन कर दिया। क्योंकि कोई भी पेपर आता है तो वो हमारा फाउंडेशन हिलाने के लिए आता है, और वो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन। तो चौथा कदम बाबा का था कि बेगमपुर का बादशाह, बेगरी पार्ट होते हुए भी स्वयं को बादशाह रूप में समझना, बेगमपुर के बादशाह इस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना कि कोई गम भी बाबा के पास नहीं आ सकता था। और ये बेगरी पाठ कोई एक दिन का या एक महीने का या एक साल का नहीं चला, कई सालों तक चला। और इसलिए जब इतने सालों तक ऐसा बेगरी पाठ हो, आप लोग गृहस्थी अनुभवी हो कि जब आपके घर में अगर 5 मेंबर होते हैं और उनका पेट भरना होता है आपको, और अगर घर में 5 रुपया तो क्या 4 आना भी न हो, अनाज का दाना न हो, तो उस समय स्थिति कैसी हो जाती है, कितनी टेंशन वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन बाबा के सामने 350 बच्चे थे, कोई 1, 2 या 5, 10 की बात नहीं थी, लेकिन 350 होने के बावजूद जब यज्ञ के अंदर 4 आना नहीं होता था, अनाज का कोई दाना नहीं होता था, और दादी आती थी, ब्रिजेंद्रा दादी, कि बाबा आज 4 आना भी नहीं है, अनाज का दाना तक नहीं है और ये सारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो बाबा इतना सहज सरलता से कह देता था, बच्ची 10 बजे आना। दादी सोच में पड़ जाती थी, अभी नहीं है, 10 बजे बाबा कहाँ से निकालेगा। लेकिन बाबा जैसे बेफिक्र होकर कहता था, बच्ची 10 बजे आ जाना। दादी 5 मिनट पहले पहुंच जाती और बाबा घड़ी में देखता, अच्छा बच्ची 5 मिनट जल्दी आ गई, बैठो। और ठीक 10 बजे पोस्ट में आता था और उसमें मनी ऑर्डर आ जाता था, कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया। उन दिनों में तो 500 रुपया भी बहुत होता था। और जैसे ये मनी ऑर्डर आता था, पोस्टमैन गिनती करके 500 रुपया दे देता था, बाबा दादी को देता था और कहता था, जाओ अनाज मंगाओ और बाजरे का ढोडा और छाछ बना करके सबको दे दो। भावार्थ ये कि बाबा के चेहरे पर कभी कोई प्रकार की टेंशन की रेखा नहीं देखी। और इतने सालों तक ये पाठ चला, बाद में जब दादियां पूछती थी बाबा से कि बाबा आपको कभी टेंशन नहीं होता है ना, नेचुरल है, संकल्प तो आता कि बाबा को टेंशन नहीं होता था। उस समय बाबा क्या अभ्यास करते थे जो बाबा के मन के अंदर टेंशन की रेखा नहीं होती थी। और जब बाबा से पूछते थे, बाबा ये 500 रुपया भेजने वाला कौन है, तो बाबा मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जिसका राम से इतना प्यार है, जो छुप छुप के 500 रुपया भेज देती। और जब इस घटना को मैं याद करती हूँ, तब मेरे मन के अंदर यही आता है कि जो भी वो मंदोदरी थी 500 रुपया भेजने वाली, जिसने आई वेल के समय में भगवान के यज्ञ की मदद की, उस आत्मा का भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। शायद भगवान भी उसका कर्जदार हो गया होगा और सारे कल्प के लिए उसने इतना अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा कर दिया। थी वो बांधेली, लेकिन बांधेली होते हुए भी बाबा से कभी मिलने नहीं आ सकती थी मधुबन के अंदर, ऐसे रावण की कैद में वो मंदोदरी थी। तो ऐसी आत्मा होते हुए कैसी उनकी तड़प होगी, कितनी उसकी याद पावरफुल होगी बाबा के साथ, और कैसा उसका भाग्य होगा। और अंतिम जन्म में ये भाग्य जो बाबा ने उसको दिया, जैसे जन्म जन्मांतर के लिए, कितने जन्मों के लिए भगवान ने भी उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया होगा। आज तो कई लोगों को संकल्प चलता है, देने के बाद भी संकल्प चलता है, देने वक्त भी संकल्प चलता है, लेकिन वो छुप छुप करके जो भेजने वाली मंदोदरी थी, उसकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ होगी। और सचमुच जब वो मुक्त होकर के मधुबन में आई भी, तो बाबा ने अपना कमरा खाली करके उसको देने के लिए तैयार हो गए। आप सोचो, सभी ने मना किया और उसके बाद बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी ने अपना कमरा खाली करके उसको दिया, उसको वहां रखा और बाबा ने इतनी खातरी की उसकी। लेकिन कई बार जब बाबा ऐसी खातरी करते थे, तो लोग सोचते थे क्या बाबा के सामने भी पक्षपात होता था। पक्षपात की बात नहीं थी, लेकिन कैसे बाबा भी कर्जदार होकर के जैसे उस आत्मा की सेवा के लिए तत्पर हो जाता था। माना इतनी लगन और इतनी भावना हमारे अंदर भी हो, जो भगवान भी कुर्बान जाए ये अनुभव कर पाएंगे। पक्षपात की बात नहीं है, लेकिन हम बाबा के साथ ऐसी लगन रखें, ऐसी लगन के साथ जब उसको याद करते हैं, उसका यज्ञ सो मेरा यज्ञ, उसका घर सो मेरा घर, ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाए, ऐसी समर्पित बुद्धि हो जाए, तो शायद बाबा भी उस आत्मा के लिए कुर्बान जाएगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जब बाबा से पूछते थे कि बाबा आपको कोई चिंता नहीं होती थी कि इतने लोगों को क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, तो बाबा मुस्कुराकर कह देते थे, बच्चे ये बच्चे किसके हैं, ये मेरे बच्चे थोड़ी है, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, तो मुझे टेंशन क्यों होगा। टेंशन तो शिव बाबा को होना चाहिए, चिंता तो शिव बाबा को होनी चाहिए। भावार्थ ये कि बाबा ने जब समर्पण किया अपने आप को, तो सारी चिंताएं भी उसको सौंप दी। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कई बार कहते हैं कि बच्चे आपके ऊपर जो टोकरी है चिंताओं की, वो बाबा को दे दो। लेकिन हम यहाँ जब आते हैं, हम बाबा से मिलने समय इतने खुश हो जाते हैं, बाबा को कहते हैं आज से मेरी सारी चिंताएं तुझे सौंप कर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, वापस टोकरी अपने ऊपर उठा लेते हैं। तो बाबा ने कभी भी इतना निश्चय बुद्धि कि बाबा ने कभी भी वो टोकरी वापस अपने सिर पे नहीं लिया, और इसलिए बेगमपुर का बादशाह बाबा बना रहा। ये प्रैक्टिकल कदम चल करके दिखाया बाबा ने कि सब कुछ जब शिव बाबा का है, शिव बाबा जिम्मेवार है, तो बाप दादा को सौंप दो और आप स्वयं हल्के हो जाओ। लेकिन निश्चय वही तो हिल जाता है जो बार बार वो चिंता की टोकरी अपने ऊपर उठा लेते हैं। कभी कभी बाबा मुस्कुराकर कह देता, बच्ची पहला भोग किसको लगना है, यज्ञ में पहला भोग किसको लगता है, खाना बनता है तो भोग किसको लगाते हैं, शिव बाबा को लगाते हैं ना। जिस दिन शिव बाबा भूखा रहेगा, उस दिन उसके बच्चे भी भूखे रहेंगे। और भक्ति में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान भूखा रहे, कितना निश्चय है देखो, कि भक्ति में भी ऐसा नहीं रहा कि भगवान कभी भूखा रहा हो। दुनिया के लिए भी यही कहा जाता कि भगवान सुबह भूखा उठाता है, लेकिन रात को कभी भूखा सुलाता नहीं है किसी को। इतनी जब जिम्मेवारी है भक्ति में भगवान की, तो हम तो उसके साक्षात बच्चे हैं। और इसलिए ये हो नहीं सकता है कि शिव बाबा को भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ न हो। इसीलिए बाबा बेफिकर बादशाह रहते थे, बेगमपुर के बादशाह हो जाते थे। उनको विश्वास था, निश्चय था कि पहला भोग तो उसको ही लगना है। इसलिए कभी कभी बड़ी दादी जी पूछती थी खास करके गृहस्थियों को कि आप घर में भी पहला भोग बाबा को लगाते हो या ऐसे ही खा लेते हो, क्या करते हैं? जो लोग सबसे पहला भोग बाबा को लगाते हैं, तो बाबा की भी जिम्मेवारी है कि अंत तक उसको दाल रोटी जरूर खिलाएगा बाबा, कभी भूखा शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये निश्चय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से लेकर के ये मतलब से भोग लगाना चालू करे कि ताकि अंत में हमें बाबा कहीं भूखा मरना न पड़े, अंत तक कम से कम दाल रोटी बाबा दे, ये मतलब वाला रिश्ता नहीं रखना। प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराना, और इतना प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराना कि बाबा खुद भी वो भोजन जो आपका बना हुआ स्वीकार करके, घर वाले जो भी उस भोजन को उसके बाद स्वीकार करेंगे, उनकी बुद्धि भी परिवर्तन हो जाएगी। कई बार कई लोग कहते बाबा हमारे फलाने रिश्तेदार की या परिवार वाले की बुद्धि चेंज कर दो। बाबा उनको कई बार ये युक्ति बताते हैं, बच्चे आप बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा को स्वीकार कराओ और बाबा को प्यार से स्वीकार कराया हुआ भोजन फिर उस भोजन के अंदर उसको मिला करके सभी को परोस दो तो वो ताकत ऐसी होगी जो कैसा भी इंसान वो ब्रह्मा भोजन जब खाएगा तो उसकी बुद्धि परिवर्तन तो होनी ही है। तो इसीलिए जब युक्ति मिली हुई है उसके बाद भी कई बार प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं तो बाबा कहे ये युक्ति को यूज करो, जो युक्ति को यूज करते हैं उसको सहज मुक्ति मिल जाती है। तो युक्ति युक्त होकर के चलना है तो मुक्ति स्वाभाविक रीति से मिल जाते हैं, जड़ता से कोई बात को पकड़ना नहीं है, युक्ति युक्त होकर के समझदारी से चलने की बात होती है कि गृहस्थ व्यवहार में भी कैसे चलना होता है। तो ये बाबा का चौथा कदम था कि बेगरी पार्ट में भी बेफिकर बादशाह। इतना कड़े से कड़ा पेपर बाबा के सामने आए तो भी बेफिकर, ऐसे ही बाबा सिखाते कि आप सबके सामने तो इतना कड़ा पेपर नहीं आया होगा, फिर आपको छोटी छोटी बातें टेंशन में क्यों ले आती है, बाबा को दे दो और बेफिकर हो जाओ। पांचवा कदम था उसके बाद बाबा का कि जैसे ही फिर यज्ञ का परिवर्तन हो गया, बेगरी पार्ट समाप्त हो गया और धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे और सेंटर्स खुलते गए, बच्चे आने लगे बाबा से मिलने के लिए और यज्ञ धीरे धीरे विस्तार होने लगा, तो बाबा का पांचवा कदम था प्रैक्टिकल कर्मयोगी जीवन का। और ये कर्मयोगी जीवन के हर चीज बाबा स्वयं करके सिखाते थे सब बच्चों को। अनाज साफ करना होता था बाबा मम्मा खुद बैठ जाते थे और बाबा मम्मा को बैठा हुआ देख करके सारे बच्चे जो इधर उधर बैठे होते थे वो भी वहां पहुंच जाते थे यज्ञ सेवा करने के लिए। कभी बाबा धोबी घाट पर चला जाता था, कभी बाबा कहाँ चला जाता था, किचन में चला जाता था, माना बाबा खुद उस एज में भी जैसे सब जगह जाकर के खुद अपना प्रैक्टिकल कर्म करने का पाठ, और ये कर्म करके बाबा सिखाता था कि कैसे बाबा के याद में कर्म करेंगे तो कभी कोई कर्म में गलती नहीं होगी, कभी कोई कर्म में नुकसान नहीं होगा। तो कर्म करते हुए बाबा की याद में रह करके कर्म करने से कितना उस कर्म के अंदर परफेक्शन आता है ये बाबा प्रैक्टिकल करके सिखाता था। और इसलिए जब बाबा के सामने कोई बच्चे अगर कर्म करते कोई चीज बिगड़ जाती या कह देते बाबा ये तो मेरे से नहीं होता तो बाबा उस बात को स्वीकार नहीं करते थे। मुझे याद आता है कि एक बार किसी ने ये अनुभव सुनाया था कि दो माताएं थी जो दिल्ली में, बाबा बीच बीच में जब दिल्ली जाते थे तो वो दो माताएं कितने भी दूर बाबा क्यों नहीं रहता हो लेकिन वहां क्लास करने के लिए जरूर पहुंच जाती थी और सबसे पहला नंबर जैसे आकर के बैठ जाती थी बाबा के क्लास में, इतनी लगन वाली माताएं थी। तो एक दिन बाबा जब क्लास करा रहे थे तो बाबा का ध्यान गया कि आज ये दोनों माताएं दिखाई नहीं दी, क्या हो गया। जैसे क्लास पूरा हुआ तो बाबा क्लास के बाद जैसे बाहर आंगन में आए तो देखा दोनों माताएं आ गई, तो बाबा ने पूछा बच्ची आज सुबह के क्लास में नहीं आई और इस वक्त आई। तो दोनों माताओं ने कहा बाबा हम बस में बैठे थे, आपकी याद में बैठे थे तो बस स्टॉप का कब चला गया पता ही नहीं चला, तो इसलिए लास्ट स्टॉप पर उतरना पड़ा और वहां से दूसरी बस लेकर के आए तो क्लास पूरा हो गया। तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, बच्ची तुम बाबा की याद में नहीं थी, क्योंकि बाबा की याद में होती थी ना तो बाबा टचिंग करता था और ये कैच करके तुम उतर जाती थी, लेकिन तुम और कोई ख्याल में होंगी, बाबा की याद में नहीं। भावा किए कि इतनी छोटी सी बात भी अगर बाबा की याद में किया होगा तो उसमें ये हो नहीं सकता है कि गलती हो चूक हो, ये हो नहीं सकता है। बाबा की याद इतनी शक्तिशाली है, उसमें टचिंग ऐसी होती है कि उसी वक्त ख्याल होकर के उतर जाएंगे। तो ये मत कहो कि बाबा की याद में बैठे थे और इसीलिए बस स्टॉप चला गया, ये गलत बात। माना बाबा तुरंत करेक्शन कर देता था कि कोई कितना भी बताना चाहे कि बाबा हम आपकी याद में थे। इसीलिए कई बार मुरली में बाबा कह भी देते हैं कि कई लोग कहते हैं हम सारा दिन बाबा की याद में रहते हैं, बाबा समझ जाते हैं कि सारा दिन तो याद रह नहीं सकती, ब्रह्मा बाबा को खुद को कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो बच्चे कैसे कह सकते कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, है ना। इसी तरह प्रैक्टिकल कर्म करने की जहाँ बात आती थी यज्ञ के अंदर भी, तो निर्मल शांता दादी का अनुभव कई बार उन्होंने सुनाया है कि वो बस चलाते थे यज्ञ के अंदर। तो एक दिन बाबा ने उनसे कहा कि बच्ची ये टायर जब चेंज करते हैं तो टायर पुराने हो गए उसको क्या करेंगे, तो उसकी चप्पल बना दो, बाबा भी वो चप्पल पहनेगा और सब बच्चे भी वो चप्पल पहनेंगे उसी की। तो दादी ने मुख से कह दिया कि बाबा मैं कोई मोची थोड़ी हूँ जो चप्पल बनाऊंगी, है ना, देह भान तो फिर भी हर एक में होता ही है ना। तो जब कहा कि बाबा मैं मोची थोड़ी हूँ, मुझे चप्पल बनाना नहीं आता है, तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगा, बच्ची अगर मोची जितनी भी अकल नहीं होगी तो विश्व की महारानी कैसे बनोगी। माना बाबा ये बताना चाहते थे कि विश्व के महाराजा महारानी बनना हो तो उसको 16 कला संपूर्ण बनना बहुत जरूरी है। वो कह नहीं सकते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता है, क्योंकि ये कहना माना नास्तिक, बाबा यही टाइटल दे देता था, ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। तो इसीलिए जब वो कहे कि बाबा मुझे ये नहीं आता है तो कहाँ की भेंट बाबा कहाँ कर देते थे, और बाबा कहने लगे, बच्ची अगर मोची जितनी भी अक्ल नहीं है चप्पल कैसे बनानी, तो विश्व का राज्य भाग्य कैसे चलाओगी, फिर तो तुम विश्व की महारानी नहीं बन सकते। बाबा को गुस्सा नहीं आता था कोई अगर ना करता था तो, आज हमें कोई काम के लिए मना कर दे तो शायद कितना गुस्सा आता है, लेकिन बाबा ने इस तरह अपने गुस्से को भी वश किया हुआ था या जीत प्राप्त की हुई थी कि कोई भी बच्चा कुछ भी अगर बाबा के सामने कह भी देता था तो भी बाबा उस बात को कैसे ज्ञान युक्त होकर के परिवर्तन कर देता था। और तब कहा कि विश्व की महारानी मैं क्यों नहीं बनूंगी, जरूर बनूंगी। तो बाबा कहे, फिर अगर मान लो कि तेरी प्रजा में से कोई कहे कि मुझे ये बनाना है, क्या विश्व की महारानी महाराजा चप्पल नहीं पहनते थे, मोजड़ी नहीं पहनते थे, अगर वो कहे मुझे नहीं आता है तो विश्व का महाराजा महारानी माना 16 कला संपूर्ण उसको वो आना ही चाहिए, वो सिखा सके उसको बता सके। तो फिर जब कहा कि अच्छा मैं बनाऊंगी और इतनी सुंदर चप्पल बनाई उस टायर में से कि ब्रह्मा बाबा ने खुद भी वो चप्पल पहनी, इतनी निर्माणता थी बाबा की। भावार्थ ये कि प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन पांचवा कदम, और ये प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन होते हुए भी इतनी निर्माणता बाबा की कि कहीं पर भी अहंकार का अंश नहीं कि मैं ये टायर की चप्पल कैसे पहन सकता हूँ, ये अभिमान नहीं बाबा को। कहाँ एक समय हीरे जवाहरत के व्यापारी कभी पैरों को जमीन पर नहीं रखा है ना, और कहां वो टायर की चप्पल पहनते हुए चलते। भावार्थ ये कि कितनी निर्माणता बाबा के अंदर थी, कितने निर्माण चित होकर के चलते थे। और जब बाबा ने पहनी वो चप्पल तो यज्ञ के सभी वत्सों ने वही चप्पल पहनी। तो बाबा हर कर्म प्रैक्टिकल करके सिखाते थे, ये पांचवा कदम। उसके बाद बाबा का छठा कदम था कि बाबा ने तपस्या आरंभ कर दी, बहुत गहन तपस्या। कि बाबा के सामने जब एक बच्ची आई थी और बाबा उस समय तो ध्यान में भेज देता था, तो इसी तरह से बाबा ने उस बच्ची से कहा कि बच्ची बाबा से जाकर के ये पूछ के आओ। और उस तरह से जब वो ऊपर वतन में गई और वहां जो अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप ब्रह्मा बाबा का देखा, तब तक तो मालूम ही नहीं होता था, वो ऑलमाइटी बाबा से ही मिलते थे। लेकिन जब वो संदेशी ने आकर के बाबा को कहा कि बाबा ऊपर जो ब्रह्मा बाबा थे ना, उसमें तो बहुत प्रकाश था, बहुत लाइट थी, और वो लाइट आप में क्यों नहीं दिखाई देती है। तब तक ये पता नहीं था कि हम सभी का भी संपूर्ण स्वरूप वतन में है, ये पुरुषार्थी स्वरूप है और ऊपर संपूर्ण स्वरूप है, और इसी पुरुषार्थी स्वरूप को उसी स्वरूप में जाकर के मिल जाना है। तो जब ये रहस्य खोला उस संदेशी ने, तो बाबा ने जानना चाहा, अच्छा बच्ची ऊपर जो ब्रह्मा बाबा को देखा वो कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे। तो उसका सारा वर्णन सुनने के बाद बाबा की समझ में जरूर आया होगा कि वो शायद मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है। और इसलिए बाबा सुबह 4 बजे उठ करके जो योग आरंभ किया, तब तक कहा जाता है कि यज्ञ के अंदर अमृत वेला नहीं होता था, लेकिन उस पाठ के बाद अमृत वेले का महत्व आरंभ हुआ। और उसके बाद बाबा सुबह 4 बजे उठ करके जैसे सकाश लेते थे शिव बाबा से, और जैसे अपने संपूर्ण स्वरूप में जाकर के मुझे मिलना है, इस तरह से जैसे पुरुषार्थ को आरंभ कर दिया। इतना गहन बाबा ने पुरुषार्थ किया, 6-8 महीने के बाद दोबारा जब उस संदेशी को बाबा ने बुलाया और बाबा ने जाकर पूछा उस संदेशी को, बच्ची अभी फिर से ऊपर जाओ, देखो उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। जब वो पुनः ऊपर गई तो कहा कि बाबा अभी भी थोड़ा अंतर है। और उसके बाद बाबा ने 2:30 बजे उठ करके पुरुषार्थ आरंभ किया, इतना गहन तपस्या की, सारे संसार को भी सकाश देना, बाबा की सकाश स्वयं में प्राप्त करना, और जैसे उस संपूर्ण स्वरूप में अपने आप को समाना, व्यक्त से अव्यक्त होने का पुरुषार्थ तब बाबा ने किया। और जब तीसरी बार उस बच्चे संदेशी से बाबा ने पूछा कि बच्ची अभी जाकर के देखो अब कितना अंतर है, तब उसने आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा अभी बिल्कुल अंतर नहीं है, वही चमक आप में भी दिखाई देती है, वही लाइट आप में भी दिखाई देती है। और तब दादियां जब बाबा का अनुभव सुनाती अंतिम दिनों का, तो यही कहते कि जैसे एक प्रकाश पुंज बाबा हो गए थे, बाबा का हाथ पकड़ते थे तो ऐसे लगता था जैसे रुई का हाथ पकड़ा हो, इतना हल्का हो गया था। बाबा अगर चले जाते थे, गुजर जाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक बादल गुजर गया, इतना हल्कापन। और बाबा के सामने अगर कोई जाता था अपना सेवा समाचार सुनाने के लिए, बाबा सुनते हुए भी जैसे इतने उपराम थे कि बाबा एसेंस को कैच कर लेते थे, सार को कैच कर लेते थे। तो भावार्थ ये कि बाबा एक्स्ट्रा बातों को नहीं सुनता था, जो मुख्य बातें होती थी उसको ही सुनते हुए समझ जाता था कि क्या सुनाना चाहते थे। कभी कभी तो भाई बहन ने सुनाते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा उनके मन के भाव को समझ जाते थे और मन के भाव को समझते हुए वही बात उच्चारण कर देते थे। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे वो भाई बहने कि मेरे मन के अंदर ये बात जो चल रही थी, बाबा ने कैसे ये बात कह दी। भावार्थ ये कि बाबा उस संपूर्ण स्वरूप में आ गए थे, और इसलिए जैसे ही ये तपस्या गहन किया, ये कदम भी बाबा ने चल करके सिखाया कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना होता है। और ब्रह्मा बाबा ने भी वो तीव्र पुरुषार्थ किया, और तीव्र पुरुषार्थ करते हुए थोड़े समय के अंदर ही व्यक्त से अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया और उस संपूर्ण स्वरूप में जैसे समाने लगे। ये छठा कदम था बाबा का। सातवां कदम था बाबा का कि जिसको बाबा कई बार 18 जनवरी की मुरलियों में सुनाया कि अपनी सारी शक्तियों को विल करने का कदम, कि जहां बाबा ने बच्चों को अपने समान बना दिया था और समान बना करके जैसे सारी शक्तियों को विल कर दिया, सारी जिम्मेवारी बाबा ने विल कर दी, किसको क्या पार्ट है यज्ञ के अंदर और यज्ञ किस तरह चलना है, ये सारी शक्तियां दादी जी जब अपना अनुभव सुनाती थी हमेशा कहती थी कि मैं बंबई में रहती थी और बंबई से जब बाबा ने बुलाया और बुला करके बाबा हाथ पकड़ करके एक एक डिपार्टमेंट दिखा रहा था, सारा स्टोर दिखा रहा था, स्टॉक कितना रखना चाहिए यज्ञ के अंदर, ये सारा समझा रहे थे। तो दादी जी को लगता था बाबा ये बातें आज मुझे क्यों समझा रहे हैं। लेकिन जैसे सारी जिम्मेवारियों को ट्रांसफर करना, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करते हुए सारी शक्तियां विल कर देना, और इसीलिए जब दादी जी ने अंतिम समय बाबा के हाथ में अपना हाथ दिया और हाथ में हाथ देते ही जैसे बाबा सारी शक्तियां विल कर गए, और शक्तियों को विल करते हुए बाबा सहज अपने तन से न्यारे होकर के उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ये बाबा का सातवां कदम था, जिम्मेवारियों को शक्तियों को विल करना। और आठवां कदम बाबा का था नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा, कि जहां एक परिवार में भी हम जब साथ में रहते हैं तो परिवार में भी लगाव हो जाता है, परंतु बाबा जब 40 साल बच्चों के साथ रहे, साकार का पार्ट भी कितने सालों का चला है ना, तो इतना सालों का जब साकार पार्ट चला 1936 से लेकर 69 तक का 33 साल का पार्ट चला, इकट्ठे रहे जहां बच्चों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम स्थिति बाबा की थी नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उपरांता की स्थिति, न्यारेपन की अवस्था। और इसीलिए शिव बाबा का प्यारा और मुरब्बी बच्चा कहलाया गया कि इतने साल साथ में रहने के बाद भी किसी बच्चे में बाबा का लगाव नहीं था, इतना न्यारा और प्यारा रहा बाबा। और इस तरह से नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, यानी प्रैक्टिकल बाबा ने हमें भी सिखाया, जब बाबा भी अंग संग 33 साल रहे, लेकिन फिर भी बाबा अगर नष्ट मुहा हो सकता है, बाबा को जब बाद में पूछा गया संदेशी बाबा को, जब 13 दिन तक भोग लगाती रही और हर बार कोई न कोई नया संदेश लेकर के आते थे और पूछते थे बाबा से कई सवाल कि बाबा आपको अंतिम समय किसी की याद नहीं आई। तो बाबा ने कहा किसकी याद आएंगी। बाबा ने इतनी गहन तपस्या किया हुआ था कि सहज न्यारा हो जाना स्वाभाविक हो गया था बाबा के लिए। और इसलिए यही गीता का पाठ है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। और यही हम बच्चों के लिए भी कदम बाबा ने चल कर सिखाया कि बच्चे नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा बनना है। साथ में रहते हुए भी बुद्धि का योग बाबा के साथ हमारा लगा रहे। कहीं किसी व्यक्ति में हमारा बुद्धि योग न लगा रहे, यही पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। तो इस तरह बाबा ने 8 कदम चल करके 8 कदम में संपूर्णता को प्राप्त की। देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, संपूर्ण समर्पण, यज्ञ मात पिता बनकर के पालना करना, बेफिकर बादशाह का स्वरूप बेगरी पार्ट में भी, प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन, तपस्या वाला जीवन, शक्तियों को विल करना, और अंतिम कदम था बाबा का नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा का। भावार्थ ये कि बाबा ने ये कदम चल करके जब सिखाया है तो हम बच्चों को भी इन्हीं कदमों पर चलते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। और शायद ये 18 जनवरी हमें यही स्मृति दिलाती है कि 8 कदम में संपूर्णता को प्राप्त करना। गीता के अंदर भी यही बातें आत्म दूसरे अध्याय से आत्म का पाठ देते हुए अंतिम अध्याय नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा प्रैक्टिकल गीता जीवन जिया बाबा ने, और यही हम बच्चों को सिखाया। और हम बच्चों को आज 18 जनवरी के निमित्त यही प्रेरणाएं बाबा के जीवन से लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। स्वयं को आत्मभाव में स्थित कर ले। अंतर चक्षु से स्वयं को देखे। प्रकृति के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति। धीरे धीरे स्वयं को देह और देह की कर्मेंद्रिय के आकर्षण से ऊपर उठाते चले। अर्श से फर्श की ओर और अपने लाइट के स्वरूप में है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को देखे। मैं अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त वतन में जहाँ चारों ओर चांदनी सा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, वहाँ अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देखती हूँ। बाबा के नैनों से असीम प्यार, प्रवाहित हो रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा की उस अमी दृष्टि में प्यार के सागर में समा जाती हूँ। बाबा के मस्तक से लाइट और माइट मैं स्वयं में समाते हुए लाइट हाउस माइट हाउस स्वयं को महसूस करती हूँ। बाबा के मस्तक से पावरफुल सकाश मुझ आत्मा को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव कराती है। Thank you. इस सकाश में। मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही हूँ। संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मैं अपने मस्तक पर अनुभव करती हूँ। कितना सुंदर अनुभव है ये। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। Bob.